इन प्रीवियस चैप्टर यू सॉ दैट देवांश का एनकाउंटर दिशा के साथ कंटिन्यू हुआ विद हिज डिजायर टू बी क्लोजर टू हर. ही वॉज लेफ्ट अलोन बाय हर. देन वी सॉ रूही और परी का रिटर्न, द आर्ग्यूमेंट बिटवीन कामना एंड रूही और प्रीता का एंगर. नाउ नेक्स्ट चैप्टर 119. अब आगे. सिंघानिया विला. रात का वक्त. रुद्र का कमरा. रुद्र अपने कदम रूही की तरफ बढ़ा देता है. वहीं रूही की नज़र जैसे ही अपनी तरफ आते हुए रुद्र पर पड़ती है तो वे कंफ्यूज हो जाती है कि वे उसकी तरफ क्यों आ रहा है. लेकिन फिर उसकी नज़र आइसक्रीम के बाउल पर पड़ती है जो पूरी खत्म हो चुकी थी, जिसे देख रूही को लगता है कि रुद्र को भी आइसक्रीम चाहिए. इस बात को महसूस कर रूही रुद्र की तरफ देख काफ़ी इनोसेंट आवाज़ में बोली, आपको भी आइसक्रीम चाहिए, लेकिन सारी आइसक्रीम तो खत्म हो गई. रूही की बात सुनकर रुद्र अपनी रूह के करीब आ उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, माई इनोसेंट रू, कोई बात नहीं, मैं अपनी आइसक्रीम अपने तरीके से खा लूंगा. इतना बोल वे रूही के होठों पर लगी हुई आइसक्रीम को अपनी जीभ से लिक करता है, जिसे महसूस कर रूही के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वे रुद्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वे अभी ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाई थीं कि रुद्र बिना उसके आगे की कोई बात सुने उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है, जिसे महसूस कर रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वे रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है. पर रुद्र को उसके छोटे छोटे हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वे रूही के होठों को पूरी शिद्दत से किस कर रहा था. उसे रूही के होठ किसी चेरी के कम नहीं लगते थे, जिसे वे जितना भी क्यों न चूम ले, लेकिन उसका मन ही नहीं भरता, बल्कि उसे और भी ज्यादा खाने का मन करता है. रूही के होठों पर किस करते करते रुद्र अपने हाथ रूही के सूट के अंदर डाल उसके कमर को सहलाने लगता है. वहीं रुद्र के हाथ अपनी कमर पर महसूस कर रूही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे रुद्र के हाथों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है. रुद्र का इस तरह करीब आना, उसे इस तरह छूना अब रूही को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगता था, लेकिन फिर भी अभी वे रुद्र को पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई थी, इसलिए उसे ये सब थोड़ा अजीब भी लगता था, जिस वजह से वे रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है. मगर रुद्र था कि रूही से दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था. उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वे रूही के होठों में पूरी तरह से खोसा गया है. रूही को यूं ही आधे घंटे तक लगातार किस करने के बाद रुद्र को जब महसूस होता है कि उसकी रूह को सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, तब जाकर वे रूही को छोड़ता है. वहीं रुद्र के छोड़ते ही रूही सीधा जा रुद्र के सीने पर गिर जाती है और उसी तरह लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, क्योंकि उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे खड़ी भी हो पाए. उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी अभी खाना खाकर उसे जो थोड़ी बहुत एनर्जी मिली थी, उसे रुद्र ने एक झटके में ही उसके छीन ली. उसे तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो रहा था. उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर रुद्र एक सेकेंड की भी देरी करता तो पक्का सांस न ले पाने की वजह से उसकी जान चली जाती. वे तो रुद्र ने उसे कमर से थाम रखा था, वरना वे तो कब का गिर चुकी होती. उसके शरीर का पूरा भार रुद्र के ऊपर था, जिसके रुद्र को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी नज़रों में उसकी रूह बिल्कुल पतंग की तरह हल्की थी. वहीं रूही अपनी सांसों को कंट्रोल कर ही रही थी कि रुद्र उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जिसे महसूस कर रूही तुरंत रुद्र के कंधे को तेजी से पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वे रूही को बेड के पास ले जा उसे बेड पे लेटा प्यार से बोला, रूह अब तुम सो जाओ और अब तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा. इतना बोल रूही को ब्लैंकेट से कवर कर देता है, जिसे देख रूही भी कुछ नहीं बोलती और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों रुद्र से नजरें मिलाने में भी शर्मा रही थी. वहीं रुद्र रूही को आंखें बंद करता हुआ देखता है तो उसकी कोमल आंखें कठोर हो जाती हैं और वे तुरंत कमरे से निकल अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है. वहीं दूसरी तरफ इंदौर में देवांश रेडी होकर कमरे के बाहर दिशा का वेट कर रहा था. तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और दिशा एक खूबसूरत सा पिंक कलर का लॉन्ग गाउन पहने कमरे से बाहर आती है. वहीं देवांश जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ सुनता है, वैसे ही उसकी नज़र दिशा पर पड़ती है और जैसे ही उसकी नज़र दिशा पर पड़ती है, वैसे ही वे अपनी नज़रें दिशा से हटाना भूल ही जाता है. वे बस एकटक अपनी तरफ आती हुई अपनी गुड गर्ल को देखने लगता है, क्योंकि दिशा उस पिंक कलर की गाउन और कानों में एक बड़ी सी स्टोन वाली बाली, गले में एक छोटा सा पेंडेंट, चेहरे पर हल्का मेकअप, साथ में होठों पर रोजी कलर की पिंक लिपस्टिक लगाए अपने खुले बालों के साथ वे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी. देवांश की नज़रें तो दिशा से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं. उसका मन कर रहा था कि वे अभी अपनी गुड गर्ल के पास जाए और उसे अपनी बाहों में भर खूब सारा प्यार करे. वे अभी इसके आगे अपने मन में और कोई ख्याल ला पाता, तभी उसके कानों में दिशा की आवाज़ पड़ती है, सर चलें? दिशा की आवाज़ जैसे ही देवांश के कानों में पड़ती है, वैसे ही देवांश अपनी होश में वापस आता है और दिशा को एक नज़र देख अपना सर हाँ में हिला देता है. उसके बाद देवांश और दिशा दोनों होटल से निकल जाते हैं. एक घंटे बाद मूनलाइट होटल. देवांश की कार एक आलीशान होटल के सामने आकर रुकती है और देवांश दिशा के साथ कार से निकल होटल से अंदर चला जाता है. होटल के अंदर जाते ही सबकी नज़र देवांश और दिशा पर जाती है. वे दोनों साथ में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे. वहीं मिस्टर रस्तोगी, जो कुछ दूरी पर खड़े कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहे थे, उनकी नजर जैसे ही देवांश और दिशा पर जाती है, वे उन्हें एक्सक्यूज मी बोल देवांश की तरफ चले जाते हैं। वे देवांश के पास पहुंचते हुए बोले, वेलकम मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ आए ये देख मुझे काफी अच्छा लगा। इतना बोल वे देवांश से कुछ बिजनेस के रिलेटिव बातें करने लगते हैं। वहीं उन दोनों को बातें करता हुआ देख दिशा यहाँ बोर होती जा रही थी। वहीं दूर खड़ा ड्रिंक करता हुआ वीनू, जिसकी नजर कब से दिशा के खूबसूरत चेहरे पर बनी हुई थी, वे देवांश को मिस्टर रस्तोगी से बात करता हुआ देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां मैना आ जाती है और वीनू को रोकते हुए बोली,
वीनू तुम्हें मालूम है ना, तुम आग से खेलने जा रहे हो। अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो वे तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम उस लड़की से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दोस्त किसी दर्द को बर्दाश्त करे, इसलिए फिर से कह रही हूँ, उसके दूर रहो, क्योंकि मैंने मिस्टर सिंघानिया की आंखों में उस लड़की के लिए एक अलग ही जुनून देखा है, और मैं नहीं चाहती कि उसकी जुनून की आग में तुम जलो।